नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुभवाणी शील प्रभुपाद की कल हम धृतराष्ट्र पांडु और विदुर के जन्म के बारे तक पाठ किया था। व्यासदेव के द्वारा अम्बा के गर्भ में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, बल्कि जन्म से ही धृतराष्ट्र अंध थे और पांडु का जन्म हुआ था अम्बालिका के गर्भ से और एक दासी के गर्भ में व्यासदेव के पुत्र के रूप में विदुर का जन्म हुआ था। तो वैसे भीष्मदेव फिर उनको अपने भाई के रूप में बहुत ही प्यार करते हुए उनको संभालने लगा बचपन से, और राज्यभार राज्य शासन भीष्मदेव ही कर रहे थे। भीष्मदेव ही राज्य का शासन करते थे और जब धृतराष्ट्र युवावस्था प्राप्त हुआ तो भीष्मदेव ने सोचा कि गांधार राज कन्या गांधारी बहुत ही सुंदरी पुण्यवती और सत्प्रवृत्ति की कुमारी हैं, तो ये सोचकर भीष्मदेव ने सोचा कि ये अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह हो। और गांधार राज्य आज जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कांदाहार नाम के एक शहर है, तो असल में वो कांदाहार ही पहले गांधार राज्य था और वहां के राजकन्या राजकुमारी थी गांधारी। और पांडु और धृतराष्ट्र का महिमा वैसे ही प्रचार हो गया था, क्योंकि लोग जानते थे कि पांडु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और धृतराष्ट्र सबसे बलवान था। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथी का शक्ति था। धृतराष्ट्र का जन्म के समय, मतलब धृतराष्ट्र के जन्म के पूर्व जब सत्यवती ने व्यासदेव को पूछा ये लड़का कैसा होगा, तो व्यासदेव ने तब बताया था कि इसमें 10,000 हाथी का शक्ति रहेगा, ये बहुत ज्ञानवान होगा, ये केवल बलवान ही नहीं, ये बहुत ज्ञानवान भी होगा, और बल्कि चूंकि उसकी मां उसको गर्भधारण करने के समय आंखें बंद करके रखी थी इसलिए वो अंधा होगा। तो और विदुर सबसे धर्मज्ञ और धर्मपरायण थे, ये तीन भाई का गुण ऐसे चारों तरफ फैल गया था। और भीष्म ने सुना कि भीष्मदेव को खबर मिला था कि गांधार राज को जो पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्ना है और उसमें भगवान शंकर की आराधना करके उसको ये वर मिला था कि वो 100 पुत्र का माता बनेगी। गंधर्व। और तो भीष्म ने जब गंधर्वराज के पास दूत भेजा ये निवेदन पेश करके कि मैं चाहता हूं कि आपका कन्या के साथ मेरा भतीजा का जन्म हो, शादी हो, तो गंधर्वराज ने पहले सोचा कि अंध व्यक्ति के साथ कैसे मैं मेरा कन्या का विवाह दूंगा। पहले ने तो उनका सुबल, गंधर्वराज का नाम था सुबल, गांधारी का पिता का नाम, तो सुबल ने सोचा कि कैसे मैं एक अंधा के साथ मेरे लड़की को शादी दूं, पुत्र का विवाह करूंगा। वो सोच विचार किया, परंतु फिर कुल प्रसिद्धि और सदाचार का विचार करके वो विवाह देने की मनस्थ किया। तो ऐसे तब धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह हुआ। और इस पांडु ने बहुत प्रसिद्ध बन गया था कि उसको शौर्य वीर्य इतना था कि सब लोग उसको बहुत ही सम्मान करने लगा। और उसकी विवाह हुआ था कुंती के साथ। कुंती थे जदुवंशी राजा, जदुवंशी सूरसेन के पुत्री पृथा के साथ। सूरसेन का दो संतान था, एक था वसुदेव जो थे कृष्ण के पिता, और एक कन्या पृथा। सूरसेन का फूफा का एक भाई, फुफेरा भाई था, फुफेरा तो बोलते, बुआ का लड़का, बुआ का लड़का का कुंती भोज नाम का एक भाई था उसका, फुफेरा भाई। तो उसको कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने वादा किया था कि मेरा जब संतान होगा, पहला संतान मैं तुमको दे दूंगा। तो जब कन्या हुआ तो कन्या को कुंती भोज को दान किए थे। तो कुंती भोज वैसे कुंती को धर्म पिता बना। और क्योंकि कुंती भोज की कन्या के रूप में वो पालन पोषण किया गया था, इसलिए उसका नाम बना था कुंती। और कुंती भी एक बहुत ही प्रसिद्ध राजकुमारी थी, उसकी सुंदरता का प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गया था। और उसका गुण का भी विस्तार हुआ चारों तरफ। तो कुंती को विवाह करने के लिए बहुत सारे राजाओं ने और राजकुमारों ने अपना मनकामना जब पेश किया, तो कुंती भोज ने सोचा कि मेरा बेटी के स्वयंवर होगा। तो उस स्वयंवर सभा में कुंती ने पांडु को वरण किया। ऐसे पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। और भीष्म ने सोचा कि पांडु को और एक पत्नी होना चाहिए, तो इसलिए भीष्म जब सुना कि मद्रराज का कन्या माद्री के गुण और सुंदरता के बारे में जब सुना, तो भीष्म ने सोचा कि ये ही यज्ञपात्री होगा उसके पत्नी बनने की। तो भीष्म ने खुद गया मद्रराज के पास और बोला कि मेरे भाई के साथ आपका बहन का शादी। मद्रराज तो पिता गुजर गए थे, बल्कि शल्य माद्री के बड़े भाई राजा बने थे उस समय। तो ऐसे माद्री के साथ भी पांडु का विवाह हुआ। तो इसके पश्चात पांडु ने दिग्विजय करने का मनस्थ किया। मतलब उन्होंने सोचा कि मैं सारे चारों ओर को विजय करूंगा, जय कर लूंगा। ये राजाओं ने ऐसा मनकामना करते थे। तो विवाह के पश्चात कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने दिग्विजय में निकला और दिग्विजय में निकलकर सबसे पहले उन्हें अपना अपराधी शत्रु दशरण नरेश्वर को पर चढ़ाई की और उसको परास्त किया। दशरण के युद्ध में जीत लेने के बाद मगध राज को जाकर, राजगृह था मगध राज, मगध का मतलब जो आज बिहार है, वहां बिहार उस समय बिहार का मगध का राजधानी था राजगृह, बाद में बना पाटलिपुत्र, वो पाटलिपुत्र ही आजकल आज का पटना है, बल्कि राजगृह का नाम है अब राजगीर, राजगृह राजा का गृह राजा का घर। तो राजगृह में जाकर उन्होंने चढ़ाई की और उस युद्ध में मगध राज को मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की। विदेह और एक राज्य है विदेह, जो जहां सीता देवी का जन्म हुआ था, वो भी बिहार के पास ही है मिथिला। तो इसलिए सीता के और एक नाम है वैदेही, विदेह के राजकन्या के होने की बात। तो बल्कि वो तो त्रेता युग का था, बल्कि उस समय द्वापर युग में जो राजा था उसको परास्त करके ऐसे उन्होंने इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया। उन्होंने राजा पांडु से अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया। तो ऐसे पांडु उस समय सारा पृथ्वी का सम्राट बन गए थे। तो इसके पश्चात एक दिन जब व्यासदेव वहां आए, तो व्यासदेव ने हस्तिनापुर में आए, तब गांधारी व्यासदेव को बहुत सेवा किया, बहुत सुंदर रूप से गांधारी ने व्यासदेव को सेवा किया। तो सेवा शुश्रूषा करके उनके बहुत ही संतुष्ट किया व्यासदेव को। तो व्यासदेव ने उनको पूछा, तुम बताओ तुमसे क्या, तुम मुझसे क्या वर मांगती हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम क्या चाहती हो। तो गांधारी बोला, मेरे पति के समान 100 पुत्र मैं कामना करता हूं। व्यासदेव बोला, तथास्तु, अर्थात तुम्हारा ये मन कामना पूर्ण हो। और यथा समय गांधारी का गर्भ हुआ, और बल्कि गर्भ होने पर भी 2 साल तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो इस समय खबर मिला गांधारी को कि कुंती का एक पुत्र हुआ है, युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ है। ये सुनते ही गांधारी का इतना इतना क्रोध हुआ कि वो अपना गर्भ को नष्ट कर दिया। तो जो गर्भ जो निकला, एक लोहा की तरह, लोहा के समान कठिन एक मांस का पिंड निकला। तो गांधारी ने सोचा कि इसको फेंक देंगे। तो व्यासदेव को इस विषय पर पता चला, तो तुरंत व्यासदेव वहां अपने दिव्य शक्ति के प्रभाव से वहां आ गए। आकर बोला, गांधारी, मैं जो बोला, मेरा वाक्य कभी विफल नहीं होगा, मैं बोला सतपुत्र होगा तुमको, तो वो होगा ही होगा। तुम ऐसा करो, 100 पात्र में घी डालो, घी से भर भरकर 100 पात्र लाओ, और ये जो पिंड है इसके पिंडे के ऊपर तुम ठंडा जल फेंको। तो मांस का पिंड पर जब ठंडा पानी फेंका, तुरंत ही वो मांस पिंड 100 भाग में, असल तो 101 भाग में विभक्त हो गया। तो व्यासदेव ने तो बताया तुम इसको एक एक पात्र में रखो घी में, और इसको संभाल के रखना ऐसे ही। और तो ऐसे 2 साल बाद उस पात्र से 100 पुत्र और 1 कन्या का उत्पत्ति हुआ। वो 100 पुत्र था दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र का 100 पुत्र, और कन्या थी दुशला, एक कन्या जिसके साथ जयद्रथ का विवाह हुआ था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उस दिन भीमसेन का भी जन्म हुआ, कुंती का द्वितीय पुत्र भीमसेन का जन्म हुआ, एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ था। बल्कि दुर्योधन का जब जन्म हुआ तब कुत्ता सिगाल आदि जानवरों ने, दुर्योधन जन्म होते कि गाधे की तरह चिल्लाने लगा जैसे गधा जैसे आवाज करता है वैसे आवाज करने लगा, और वो आवाज सुनकर कुत्ता सियाल गाधे की भांति रेखने लगा। उसके शब्द सुनकर गाधे गीधर गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे, आधी चलने लगी, कोई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण भीष्म विदुर आदि संगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं, उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र का राज्य मिलेगा या नहीं ये बात आप लोग बताइए। मैं पहले कल बोला था कि धृतराष्ट्र ये नाम के अनुसार उनका चरित्र का भी प्रकाश होता है। धृतराष्ट्र राज नहीं मिला बल्कि राज पकड़ने के लिए कितना कोशिश कर रहे, उसका जीवन का उद्देश्य था केवल कैसे राज को हम पकड़ के रखेंगे, अपना कब्जा में रखेंगे। खुद को राज नहीं मिला तो सोचा कि उसका लड़का का राज मिलेगा, वो भी नहीं हुआ, युधिष्ठिर का जन्म पहले हो चुका था। तो इसलिए वो पूछ रहा है, मुझे ये भली भांति पता है कि युधिष्ठिर ही राजा बनेगा, बल्कि युधिष्ठिर के बाद मेरा ये लड़का का तो क्या मिलेगा राज, ये सबको पूछ रहा है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मांसभोजी जंतु गीधर आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन आपके ये ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनसे तो मालूम होता है कि आपका ये पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा, आपका ये पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा, इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है, इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो सौम एक काम एक कम ही सही, सौ में एक कम ही सही, मतलब आपका तो 100 पुत्र हैं, अगर एक पुत्र कम हुआ तो उतना नुकसान नहीं होगा, मतलब इस पुत्र को आप त्याग दीजिए, मतलब ये पुत्र को त्यागने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। ऐसा समझकर इसे त्याग ही दीजिए और कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। और उन्होंने ऐसे भी बताया कि शास्त्र से निर्देश है, शास्त्र में वर्णन हुआ है कि एक परिवार को रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कुल के लिए एक मनुष्य का ग्राम के लिए एक कुल का, एक परिवार का, ग्राम को रक्षा करने के लिए एक परिवार को, और राज्य के रक्षा करने के लिए एक गांव को, और अपने आप को रक्षा करने के लिए मनुष्य का, और आत्मकल्याण के लिए सारे पृथ्वी का भी परित्याग कर दे। बल्कि सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सका। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उसकी सेवा में रहती थी, और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के जुजुत्सु नामक पुत्र हुआ था। ये बड़ा यशस्वी और विचारशील था। हम कुरुक्षेत्र के अवसर में, युद्ध के अवसर में हम देखेंगे कि जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि अगर उस पक्ष से कोई भी मेरे पक्ष अवलंबन करना चाहते हैं, दुर्योधन के पक्ष से अगर कोई मेरे पक्ष लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने अनाउंस किए थे, घोषणा किए थे। तब उस पक्ष से एक व्यक्ति आया था पांडव पक्ष में, वो था जुजुत्सु, ये धृतराष्ट्र के और एक पुत्र जिसका जन्म एक दासी के गर्भ में हुआ था। और कुल के रक्षा, युधिष्ठिर के कुल का रक्षा वही किया था, बाकी सब धृतराष्ट्र का और सब पुत्र का मृत्यु हो गया था, 100 पुत्र का मृत्यु हो गया था, केवल जुजुत्सु ही जिंदा था। तो और इस तरह पांडु का जीवन में एक विशेष दुर्घटना घटा था। पांडु को शिकार करने में, मृगया करने में उसको बहुत ही आसक्ति था। जब उन्होंने जब एक वन में विचर रहे थे, वहां हिंस्र पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। घूमते घूमते उन्हें देखा कि एक जुतपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। तो उस समय पांडु ने 5 बाण के द्वारा उस मृग और मृगी को विद्ध किया। पांडु ने 7 बाण मारे, वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते हैं। उस मैथुन अवस्था में कोई भी किसी को हत्या नहीं करता है, नहीं आघात करता है। आपके लिए तो उचित यह है कि पापी और क्रूर कर्म मनुष्य को दंड दे, निरपराधी को आप क्यों ऐसे ये किए हैं। मुझ निरपराधी को यशस्वी और विचारशील था मारकर आपका क्या लाभ हो। निरपराधी एक प्राणी को मारकर, और वो बताया कि मैं असल में कुंदक नाम के एक ऋषि हूं, क्योंकि दिन की समय मैथुन सही नहीं है मनुष्य के लिए, इसलिए मैं एक मृग के रूप धारण करके मेरे पत्नी के साथ मिलित हुआ था। मनुष्य रहकर यह काम करने की मुझे लज्जा मालूम हुई, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी बेश में घूमता रहता हूं। तो क्योंकि आपको पता नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूं, तो इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप आपको नहीं लगेगा। परंतु इस अवस्था में आप जैसे हमको मारा, इसलिए यदि आप कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपका मृत्यु होगी। और ये पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी, ये कहकर किन्दम ने अपने प्राण छोड़ दिए। जो लोग क्लास में आना चाहते हैं आप लोग 5:30 बजे आइए, इतना 6 बजे आने का फायदा क्या है। एंड क्लोज द डोर। सो तब पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे, बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूं। हाय हाय, मैं कुलीन और विचारशील हूं, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूंगा। तो ये सोचकर पांडु ने विचार किया कि वो सन्यासी बन जाए, मतलब भौतिक जीवन को त्याग कर सन्यासी बन जाएंगे और उन्हें मन ही मन विचार करने लगा कि मैं अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा। अब मैं निस्संदेह घोर तपस्या करूंगा, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूंगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रम में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडहर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उड़ जाऊंगा। ये ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है यह। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएंगे। आशीर्वाद नमस्कार सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर न तो किसी की हंसी करूंगा न तो न किसी के प्रति क्रोध करूंगा। मुंह सर्वदा प्रसन्न होगा, शरीर से सबका भला होगा और चर अचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा। सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा, कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा। लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक बाहु को बसुले से काट डालेगा और एक में चंदन लगा देगा तो उन दोनों के प्रति मैं बुरा भला कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं न जीने का चेष्टा करूंगा और न मरने की, न जीवन से प्रेम करूंगा और न मृत्यु से द्वेष। जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं उन्हें मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। मैं भला कर्म से प्राप्त होने वाले अनेक तो फलों को क्यों चाहूंगा। सारे पापों से छूट जाऊंगा, अविद्या के जाल को फाड़ डालूंगा, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ की अधीनता से छूट जाऊंगा और वायु की तरह सर्वत्र विचारूंगा। जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगता है और उन्हों के अनुसार चेष्टा करता है वो तो कुत्ते के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी में जाओ, वहां हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पूर्ववासी, पूर्ववासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने सन्यास ले लिया। कुंती और माद्री ने अपने पति के बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, आर्यपुत्र, सन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे एक आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगे और वहां भी आप ही हमारे पति होंगे। हम दोनों अपने इंद्रिय को बश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगे। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपनी पत्नियों का ये दृढ़ निश्चय देखकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है, मैं सन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में ही रहूंगा। विषय सुख और काम उत्तेजक भोजन कर परित्याग करके फल मूल खाऊंगा, बलकल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। तो ऐसे पांडु ने पहले सन्यास लेने का संकल्प किए थे, बल्कि उसके बाद जब उनके दो पत्नियां ने उनको साथ रहने का और वैसे ही तपस्वी का जीवन यापन करने का मतलब पेश किया, तब ये मान लिया, ठीक है, मैं सन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में तुम्हारे साथ रहूंगा। और तब उन्होंने दोनों ने तीन दो पत्नी के साथ पांडु वन में ही विचरण करते लगे, एक पर्वत से और एक पर्वत हिमालय में, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर पहुंचे। हिमालय में गंधमादन नाम का एक पर्वत है और वे केवल कंदमूल फल खाकर रह जाते, ऊंची नीची जमीन पर सो लेते, बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान कर रखते, इंद्रदुम्न सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके वे शतश्रृंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। तो ऐसे उन्होंने शतश्रृंग पर्वत में अपना निवास स्थान बनाए थे। एक समय पांडु ने देखा कि सब सिद्ध ऋषिगण सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने भी जाने के संकल्प किया, बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो वो बताया कि ये जो मार्ग जो है वहां जाने का वो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही दुर्लंघ है। जैसे उन्होंने मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं, ऊंचे नीचे नदियों के कगार हैं, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं, वहां बर्फ की बर्फ है, वृक्ष नहीं है, हरिन और पक्षी नहीं दिख पड़ती, पक्षी भी वहां उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेगी, आप अपनी पत्नियों के साथ ये यात्रा स्थगित करें। पांडु ने कहा, मैं समझता हूं कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। जो उनको पांडु का तब कोई संतान नहीं था, तो बोला कि जो जिसका संतान नहीं है उसके लिए स्वर्ग की द्वार बंद रहता है। मनुष्य चार ऋण लेकर जन्म लेता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पितृयों के प्रति और मनुष्य के प्रति। नृणाम पितृणाम, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। यज्ञ से देवता का, श्राद्धाय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितर और परोपकार से मनुष्य का ऋण उतरता है। तो पितृ ऋण का शोध होता है पुत्र से, तो मेरा तो पुत्र नहीं है तो इसलिए ये उन्होंने मुझे ये अभिलाषा है कि मेरे पत्नी के पेट से पुत्र का जन्म हो, तो उन्होंने ऋषियों के पास ये आशीर्वाद मांगा। तब ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए, आपका मनोरथ सफल होगा। तो ऐसे उनको देवताओं से, ऋषियों से आशीर्वाद मिला, या ऋषियों ने उनको भविष्यवाणी किए थे ऐसे। तो एक दिन पांडु ने अपनी पत्नी कुंती के साथ बैठे थे, तो कुंती को पांडु ने कहने लगा कि तो मैं तो पुत्र उत्पादन नहीं कर पाऊंगा ऋषि के शाप के कारण। तो इस स्थिति में जो मुनि ऋषियों के द्वारा पुत्र उत्पादन का एक प्रथा हमारे धर्म में है, शास्त्र में निर्देश है कि अगर पिता, अगर पुत्र, पति अगर पुत्र उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा संतान उत्पत्ति का प्रथा शास्त्र में है। तो इस बारे में उन्होंने बोल रहे थे कि आप, तुम किसी के द्वारा ये संतान उत्पन्न करो, ये शास्त्र दिखे। तब कुंती ने बताया कि आपके बिना, आपके सिवा और किसी के साथ में, किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तब कुंती ने बताया, जब मैं छोटी थी तब मेरा पिता ने ब्राह्मणों का सेवा करने के लिए हमें नियोग किए थे। जब अतिथि ब्राह्मण अतिथि आते थे, ऋषि मुनि आते थे घर में, तो उनको सेवा करने का भार मेरा ऊपर था। तो एक दिन दुर्वासा मुनि आए थे और मेरा सेवा से उन्होंने इतना प्रसन्न हुए थे कि हमको आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस देवताओं को स्मरण करोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ये कहकर उन्होंने एक मंत्र हमको दिया था। तो इस मंत्र के प्रभाव से मैं कोई भी देवताओं को मैं बुला सकता हूं और इस देवताओं के द्वारा मैं अपना संतान प्राप्त हो सकता है। तो आप बताइए मैं किसको याद करूं। तब पांडु ने कहा, सबसे पुण्यवान देवता होते हैं धर्मराज, जमराज। मैं एक पुत्र चाहता हूं जो सारे गुणों से सबसे धर्मात्मा बनेगा, वो कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। तब कुंती ने धर्मराज को बुलाए, स्मरण किया मंत्र उच्चारण करके, और तब जमराज वहां आए। अब तो जब कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती बता मैं तुझे क्या वर दूं। कुंती ने भी मुस्कुराकर कहे, मुझे पुत्र दीजिए। तद अनंतर जोग मूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि ज्येष्ठ नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। सूर्य था तुला राशि पर। ये युधिष्ठिर महाराज का जन्म लग्न था। बहुत पवित्र लग्न में उनका जन्म हुआ। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, ये बालक धर्मात्मा मनुष्य में श्रेष्ठ होगा, ये सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और ये तीन लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया, पवन देव को आवाहन किया जो सबसे शक्तिशाली देवता है, और उनसे उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि ये पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन का पैदा होते ही एक विचित्र घटना घटी कि कुंती ने भीमसेन को अपने गोद पर लेकर बैठी थी, तो अचानक वहां एक शेर आ गया। तो शेर को देखकर रही चकित होकर कुंती खड़ा हो गई, और खड़ा होते ही उसको याद नहीं था कि बच्चा अपने गोद में था, और ये पर्वत के कोने पर था वो भीम, तब फ्रॉम उनके भीमसेन की याद ना रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वो चूर चूर हो गए। बच्चा पड़ते ही वो जो चट्टान जो था पत्थर, विशाल एक पत्थर, वो चूर चूर हो गया। अब पांडु का ये विचार हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता, देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही है, यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ का पुत्र का वरदान कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती के एक वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण गौ और सुरीदों का सेवक तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र होगा। तो ऐसे तब देवराज इंद्र को कुंती ने बुलाया और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर में आकाशों के निनादित करते हुए कहा, कुंती ये बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश पढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपने माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही ये तुम्हें प्रसन्न करेगा। ये बहुत से सम्मान सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्र दान करेंगे। ये इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। ये आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रम वासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। तो वैसे तो इसके पश्चात एक दिन माद्री को अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, उससे तुम्हारा जश हो। पहले के लोगों ने भी जश के लिए बड़ी कठिन कठिन काम किए हैं। ये काम ये है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन तुम केवल एक बार किसी देवता को चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमार को चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वाओ उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप द्रव्य संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। सतश्रृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि पत्नियां इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़े प्रसन्नता से वहां निवास करने लगे। तो इसके पश्चात वसंत ऋतु में सारे वन वृक्ष पुष्प से लद रहे थे। वसंत ऋतु का प्रभाव बहुत काम उत्तेजक होता है। तो ये वसंत ऋतु के समय पांडु वन में माद्री के साथ बीच विहार कर रहे थे। उस समय बसंत ऋतु के प्रभाव से उनका मन में कामभाव का इतना प्रबल प्रभाव पड़ा कि वो अपने आप को एकदम बिल्कुल खो बैठे। राजा पांडु उसी वन में विचार रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वहां सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही भली लग रही थी। युवावस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया, मानो वन में आग लग गई है। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। तो इसके कारण उस समय उनका मृत्यु हो गया। कुंती ने आकर देखा, 5 पुत्र के साथ कुंती, जब माद्री ने रोने लगी कुंती को बुलाकर, तो कुंती वहां आई तो माद्री बोला, बच्चे लोग को थोड़ा पीछे रखो, रख के यहां आओ। तो कुंती जब आई तब कुंती देखा कि पांडु का मृत्यु हो गया, तो माद्री को बहुत डांटने लगा। बल्कि माद्री तब बोला कि मैं बहुत कोशिश किया, बल्कि मैं रोक नहीं सका उनको। तब कुंती बोला, ठीक है, तो मैं उनका प्रधान पत्नी हूं, तो मैं उनके साथ जाऊंगा। तो माद्री तब उनको समझाया कि मेरे कारण उनका मृत्यु हुआ, तो उनका मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए उनके साथ मेरा ही जाना चाहिए। और एक विचार माद्री ने दिखाया कि आपका 3 पुत्र है, मेरा 2, तो इसलिए आपको ही रहना होगा और हमको अब जाने दीजिए। तो वैसे माद्री सती बन गई पांडु के साथ, तो पतिदेव के साथ चीता पर चढ़ गई और वैसे उनके साथ स्वर्गलोक प्राप्त हुए थे। तो पांडु के मृत्यु के पश्चात उनका सत्कार किया ऋषियों ने। उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्वियों को शरण आए थे। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चे और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंप कर स्वर्ग की यात्रा करी है। अब हम लोग के लिए उचित है कि उनके पुत्र अस्थि और पत्नी को लेकर वहां पहुंच रहे। हस्तिनाथ तो ऐसे 5 पुत्र को लेकर और पत्नी कुंती के साथ और पांडु और माद्री का भस्म और अस्थि लेकर उन्होंने हस्तिनापुर आया। तो हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र और भीष्म के पास बच्चे को समर्पण किया। तो उस समय एक ये भी हुआ था, एक शक भी हुआ था किसी को कि ये क्या शक्ति ही पांडु का पुत्र है। तो तब सर्गवाणी हुआ था, आकाशवाणी हुआ, देवताओं ने बताया नहीं, ये पांडु का ही पुत्र है। उनके जन्म का भी वर्णन उस समय सब सुना था। तो इस सब जब ऐसे आए, इसके बाद व्यासदेव ने भी वहां आए और व्यासदेव ने आके सत्यवती को बोला कि अब समय बहुत खराब होने लगेगा। ये माता, उन्होंने बताया, माता जी अब सुख का समय बीत गया, बूढ़े दिन आ रहे हैं, दिन दिन का पाप की बढ़ती होगी, पृथ्वी की जवानी जाती रही, छल कपट और दोषों का बोलवाला हो रहा है, धर्म कर्म और सदाचार लुप्त तो हो रहे हैं, कौरव के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा, तुम आप जोगिनी बनकर जोग करो और यहां से निकल जाओ, अपनी आंखों बंश का नाश देखना उचित नहीं। माता सत्यवती ने इनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को इस बात की सूचना दी और दोनों के साथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चली गई। वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की। तो वैसे एक चैप्टर का समाप्त हुआ। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे।
कन्याद आश्रम बताया जाता है कि केवल ब्राह्मणों को ही इसके लिए होती है, क्षत्रियो के लिए केवल मानवपद सबको होती है, तो कैसा विचार की?
वैसे तो सन्यास, सन्यास आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही है, बल्कि अगर कोई पांडु जैसे एक महान आदमी अगर चाहते हैं तो सन्यास के संकल्प ग्रहण कर सकते हैं। साधारणतः ब्राह्मणों के लिए है, बल्कि ऐसे तो पांडु तो वैसे घर ऐसे ही छोड़ दिए थे और वानप्रस्थ के पश्चात सन्यास होता है, तो इसलिए यद्यपि वो संकल्प किया था बल्कि असल में वानप्रस्थ का आश्रम नहीं रहे। या देवताओं ने करते हैं या ऋषियों ने भी कभी कभी करते हैं, जो त्रिकालज्ञ हैं तीन काल जो देख सकते हैं उन्होंने बता सकते हैं।
आकाशवाणी
व्हाट वाणी यू से आई थॉट इट व्हाट डिड यू से भविष्यवाणी आई कुड अंडरस्टैंड। आकाशवाणी को ऐसे साधारणतया देवताओं ने करते हैं, इसलिए इसका और एक नाम है दैववाणी, देवताओं का वाणी। वानप्रस्थ आश्रम आई रीड दैट फ्रॉम हियर। विषय सुख और काम उत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल मूल खाऊंगा। वन में अच्छा बलकल पहनूंगा, आई वेयर ट्री बार्क, और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान संध्या और अग्निहोत्र करूंगा, मृग चर्म और जटा धारण करूंगा, गर्मी ठंडक और आधी सहूंगा, भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा और दुष्चर तपस्या से शरीर को सूखा डालूंगा। एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा, कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा, फल मूल जल और वाणी से पितरों तथा देवताओं का संतुष्ट कर लूंगा, महात्माओं के दर्शन करूंगा, किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूंगा, ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा। हाँ उज्जैन में रहकर भी तुम ये कर सकती हो। Actually, Prabhupada once told me, I asked Prabhupada, after Prabhupada gave me sannyas, I asked Prabhupada, why don't we follow the four stages of sannyas? Because I was thinking, you know, when I became sannyas, I was a little fired up. So, the sannyas has four stages. Kutichar, Bahudha, Parivrajak, and Paramahamsa. Then Prabhupada told me that our business is to just preach. Our sannyas is for preaching. Our sannyas is that giving up all other attachments and affinities, we commit ourselves to spreading Krishna consciousness, preaching Krishna consciousness. That is our sannyas. Our sannyas is not go to the forest and follow this austere way of life. We don't, after taking sannyas, Prabhupada didn't send us to the forest. After giving sannyas, Prabhupada sent us to the big, big cities. And the point that Prabhupada made very clear, that this sannyas is not an external thing. It is an internal consciousness. So develop that consciousness.
गुरु महाराज, हम यहाँ पर सुने हैं कि महाराज पांडु ने बहुत तपस्या किए थे अर्जुन का जन्म से एक साल पहले, और हम सुनते हैं कि इवन कुंती देवी ने भी शायद तपस्या की थी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई कार्य हम संकल्प करते हैं तो इवन भक्तों के लिए भी, जैसे भक्त सिद्धांत ठाकुर ने भी 12 साल वो प्रचार करने से पहले उन्होंने कुछ तपस्याएं की, तो कहने का मतलब ये है कि क्या हम भी कुछ अगर संकल्प करते हैं तो उससे पहले कुछ तपस्या, इस प्रकार के संकल्प लेने की आवश्यकता है?
हमारा ये देखना होगा कि देखो हमारे लिए प्रभुपाद सब कुछ करके गए, अलग से हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत में सरस्वती का स्थिति अलग था, अकेला थे, कार्य शुरू करने वाले थे। प्रभुपाद जी का भी, प्रभुपाद जी जब प्रचार करने का संकल्प किया था तब गौड़ीय मठ नष्ट हो गया था, प्रचार करने का वैसा कुछ अवसर नहीं था, इसलिए प्रभुपाद जी ने वृंदावन में रहकर, राधा दामोदर मंदिर में रहकर एक प्रकार का तपस्या ही किए थे। लेकिन बल्कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद तो हमको दे चुके हैं, हमको तो अलग रूप से और कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसा देखो, पिताजी ने बहुत कष्ट करके बिजनेस तैयार करते हैं, जैसे अंबानी, धीरूभाई अंबानी, बल्कि उनका बेटा जो है वो इनहेरिटेंस मिल गए हैं। धीरूभाई अंबानी जो किया था, अनिल अंबानी और मुकेश उनको ऐसा नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर वो करेंगे तो उसका समय का ही अपचय है। तो वैसे हमको देखना, याद करना है, समझना है कि प्रभुपाद हमको सब कुछ दे गए हैं, तो उसको सदुपयोग करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। हमको सेकंड प्रभुपाद नहीं बनना पड़ेगा, हमको केवल प्रभुपाद का सेवक बनना। ओके, सो आई ओके प्रिय
any particular reason for Pandu to get married a Jew princess?
Sometimes the Kshatriyas are advised to take more than one wife.
But he didn't have any particular reason
then. It was Bhishma's decision.
Just to get it.
Yeah.
There wasn't anything reason behind it.
Not that I know of.
Because he just got married Dhritarashtra to one, and suddenly decided to get Pandu married.
Because he saw that Pandu will have to be the king, so it's better for him to have two wives. And probably he also thought that Madhuri was so qualified, so he wanted to have some. Have her also as his wife. और उस सिलसिले में ये भी मैं बता सकता हूं कि अगर पहले कुछ कोई तपस्या कर चुके हैं वो दूसरी बात है। मेरा कहने का मतलब है ये नहीं कि इस कहने का मतलब ये है कि इस्कॉन में आकर और फिर हमको तपस्या नहीं करनी। इस्कॉन के आने के पहले अगर तपस्या हुआ है तो वह हमारा संपदा के रूप में रहेगा, दे विल बी रिमेन एज योर एसेट्स। आई वॉज थिंकिंग लाइक राधानाथ महाराज लाइफ, हिज लाइफ इज सो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यू सी, बट दैट ऑल हैपन बिफोर इस्कॉन। आफ्टर इस्कॉन ही डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, ही सिंपली हैड टू बिकम अ डिवोटी।
तपस्या इन द सेंस की, मान लीजिए जैसे मान लीजिए बहुत माला जप करना, और मतलब इस प्रकार के मतलब भक्ति में जो
कम से कम 16 माला तो जप ये तो करना ही।
मतलब मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा था, वैसे
Yes, Radha Pari.
Madhvaraj aur Shaili ka koi sambandh hai?
Kiska?
Madhvaraj aur Shaili. Madhvaraj aapne bataya tha ki Vishnudev jo Madhuri ka rishta lene ke liye Madhvaraj se baat karne gaye the, Madhvaraj is samay kya bataya
tha? Oh, acha, yeah. Nahi, us samay Madhvaraj, matlab Madras ka मध्यदेश का राजा तब था शल्य, माद्री के बड़े भाई,
माद्री
के बड़े भाई, शल्य का बहन था माधुरी. ओके लेट्स गेट द किड्स. ओके कल मैं राघव पंडित को बोला एक महाभारत चाहिए और तुरंत ही वो अपना घर से महाभारत और मैं बोला कि यहां अगर मिलेगा तो महाभारत खरीद के लाना, हिंदी महाभारत. तो बोलने लगा नहीं नहीं ये महाभारत आप रख. देखो ये तो धर्म ग्रंथ है, महाभारत धर्म ग्रंथ है जिसके अंदर गीता है. हाँ, वैसे ग्रंथ घर में अगर रखोगे तो घर वाले के सारे कल्याण हो. जो आदमी ऐसे बोलते हैं महाभारत नहीं घर में रखना चाहिए, वो समझदार आदमी नहीं है, वो मूर्ख है, ज्ञान नहीं है उन लोगों को. जो भगवान की वाणी जो है, भगवान का वाणी जहां है उस वाणी को घर में नहीं रखेंगे. हर व्यक्ति के घर में पहले महाभारत रहता था. महाभारत के कारण लड़ाई नहीं होता है, कुरुक्षेत्र होता है कली के कारण. और महाभारत अगर घर में रखोगे और पढ़ोगे और समझोगे तब कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. महाभारत ना समझाने से ही घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है. जिसका घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है जाके देखो उसके घर में महाभारत है या नहीं. जिसका घर में महाभारत नहीं है उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है. जिसका घर में महाभारत है उसका कभी भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है.